समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।
सूर्य प्रसारे अपना आलोक चारों ओर, गगनचरों ने प्रारंभ कर दिया है शोर। सवेरे की शीतल हवा ठंडक पहुंचाए, सुहानी सुबह की रौनक बढ़ाए। सुप्रभात, आइए एक हसीन सुबह की शुरुआत करते हैं, जहां एक उम्मीद है कुछ नया करने की, जहां एक मनोरम दृश्य है और उसकी चमकती बूंदे हैं। आप हैं और हम हैं, एक नई सुबह का आगाज करते हुए आप सभी को फरहतनाज का प्यार भरा नमस्कार। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शेफाली सिंह। नमस्कार शेफाली, कैसी हैं आप?
बिल्कुल बढ़िया, नमस्कार। हेलो फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड आकाशवाणी नेटवर्क। So today is a Monday morning. It's the fresh start of a fresh day, of a fresh week. Your Monday morning thoughts set the tone for your whole week. So let's see ourselves getting stronger and living a fulfilling, happier and healthier life. And a good way to do that is through cycling, because we are also celebrating.
जी बिल्कुल शिफाली, आज विश्व साइकिल दिवस है और इससे जो है वो एक्सरसाइज भी अच्छी होती है, सेहत आपकी अच्छी रहती है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, डॉक्टर्स के बारे में बताएंगे कि आखिर साइकिल के बारे में उनका क्या कहना है और किस तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज में इसको शामिल करना चाहिए। ये सारी बातें होंगी एक आधे घंटे के कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 36 सीट पर जीत दर्ज की है और 10 सीट निर्विरोध जीती है। शेष 14 सीटों में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5, एनसीपी ने 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2, कांग्रेस ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर श्री खांडू और मंत्रिपरिषद से नई सरकार की शपथ लेने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। वहीं सिक्किम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने एक तरफा जीत हासिल की है। 32 सदस्यीय विधानसभा में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटें जीती हैं और एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली है। भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले इस क्षेत्रीय पार्टी से नाता तोड़कर 10 मौजूदा विधायकों के बल पर अकेले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था। वहीं लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में डाले गए वोटों की गिनती कल होगी। इसी दिन आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा विधानसभा चुनाव और कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना होगी। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतगणना रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
The Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, which markets milk and milk products under the brand name Amul, has announced an increase in the price of polypack milk by ₹2 per litre. The new prices will be effective from today. With this, the price of the Amul milk will go up by ₹2 per litre in all markets across the country. The last time that GCMMS had raised the milk price was in February 2023. With the fresh hike, the revised milk prices for variants such as 500 ml Amul Buffalo milk, 500 ml Amul Gold milk and 500 ml Amul Shakti milk stand at ₹36, ₹33 and ₹30 respectively.
वहीं शेफाली, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं योग दिवस के लिए, तो श्रीलंका में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर जाफना स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा एसओएस चिल्ड्रंस विलेज और जाफना टीचिंग अस्पताल में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पिछले शुक्रवार को हवनटोटा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के साथ ही ये समारोह शुरू हुआ था। भारतीय उच्चायोग भी इस क्रम में 13 जून से कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष योग दिवस का विषय है महिला सशक्तिकरण।
जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शंस क्लॉक्ड अ न्यू हाई इन वैल्यू इन मे बाय प्रोसेसिंग 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ 20.45 ट्रिलियन रुपीस। दिस वाज अ 6% इंक्रीज कंपेयर टू 13.30 बिलियन इन अप्रैल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड 4% इन वैल्यू टर्म्स अगेंस्ट 19.64 ट्रिलियन रुपीज इन अप्रैल। डेटा शेयर्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई सेड दैट द मे फिगर्स वर 49% अप इन वॉल्यूम एंड 39% up in value compared to the same month in 2023. May numbers were the highest in terms of value and volume since UPI turned operational in April 2016. Immediate payment service, IMPS, transaction amount was marginally up by 1.45% in volume to 558 million in May as against 550 million in April. In value terms, it was up by 2.36% to 6.06 trillion rupees in May, up from 5.92 trillion rupees in April. The May numbers saw a 12% rise in volume and 15% rise in value versus the same month last year.
वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी रहेगी, लेकिन अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो अगले 7 दिनों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।
And now we have some news from the sports world. In hockey, the Indian men's hockey team went down 3-1 to Great Britain in its FIH Pro League 2023-24 match in London yesterday. Despite the loss, India remained third on the FIH Pro League points table behind the Netherlands and Argentina respectively. The team will face world champions Germany in the FIH Pro League on Saturday. And Indian women's hockey team suffered a 3-2 loss to Great Britain in their second FIH Pro League match. India currently placed 7th in the FIH Pro League points table. They have won 2 of their 14 matches so far and have lost on 11 occasions, including 6 in a row.
और शेफाली, हॉकी के बाद अब बात कर लेते हैं मुक्केबाजी की। अमित पंघाल और जैस्मिन लिम्बोरिया ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। बैंकॉक में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने पुरुषों के 51 किलोग्राम भार वर्ग और राष्ट्रीय महिला चैंपियन जैस्मिन लिम्बोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। जैस्मिन ने एकतरफा क्वार्टर फाइनल में माली की मैरिन कामरा को आसानी से 5-0 से पराजित किया। इससे पहले अंतिम अमित पंघाल ने भी आसान जीत दर्ज की।
And in tennis, Indian tennis player Rohan Bopanna and his Australian partner Matthew Ebden progressed to the third round of the French Open 2024 men's doubles event at the Stade Roland Garros in Paris. Bopanna and Ebden beat Marcelo Zorman and Orlando Luz of Brazil 7-5, 4-6, 6-4. The Indo-Australian tennis pair was to face Sebastian Baez of Argentina and Thiago Seibot-Wild of Brazil in the second round, but their opponents withdrew. As a result, Bopanna Ebden will now face the Indo-Mexican pair of N. Sriram Balaji and Miguel Angel Reyes Varela Martinez in the third round of the Grand Slam.
और श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में रात 9:30 बजे से भीषण गर्मी से बचाव विषय पर चर्चा होगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्ण एस वत्स और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉ पीयूष रंजन भाग लेंगे। और श्रोताओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो शेफाली, क्या है आपके पास सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
यस, लेट्स बिगिन विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। More than 84 lakh people used metro trains during summer holidays in the month of May. This comes after nearly a 4% drop in passenger traffic in April, when around 81 lakh commuters used the metro service. This rise in passenger traffic has taken the daily footfall in May to an average of 2.7 lakh as schools and colleges are closed after exams, and the number of flyers and people boarding out station trains for summer holidays have used metros. Another news from Chennai. Two lawyers from Madras High Court, Abdul Saleem and S. Elam Bharati, received awards for excellence in the UK-India Legal Corridor presented by former Chief Justice of India, Ranjan Gogoi. The organization is a premier networking platform for senior lawyers from both India and the UK. The legal partnership of London-based lawyer Ajit Mishra hosted its annual awards ceremony on May 31st at Court Hall No. 1 in the Supreme Court of the United Kingdom. And now we have some news from Bengaluru. The election machinery is gearing up for the Lok Sabha election votes counting day in Karnataka for Tuesday. The counting will begin in 28 counting centres in the state at 8 a.m. Over 13,000 counting personnel are deployed on that day. The strong rooms where the EVMs are stored will be opened at 7:45 a.m. and the counting personnel will be deployed randomly to the counting tables. The postal ballots will be counted and then simultaneously EVMs will be activated for counting of the votes. The counting of VVPAT paper slips will happen next. The VVPATs from 5 different polling stations from each assembly constituency will be counted and verified. Only those with entry passes will be allowed inside the counting centres. Mobiles and bags will not be allowed inside. The agents of the candidates in fray will have no physical access to CU or VVPAT or postal ballots, but will be able to clearly see and note the contents on the CU display or postal ballot. After every round, the data will be fed into the computer, kept in front of the returning or assistant returning officer and the agents of the candidates. There will be three-tier security around the counting centres. And now news from Hyderabad. The Grand Carnival at Tank Bund in Hyderabad, commemorating the Telangana decennial celebrations, served as the perfect platform to showcase the state's rich cultural heritage yesterday. The festivities featured a vibrant display of traditional arts, music and dance. The celebrations began with a massive public carnival stretching from the Tank Bund's entry point to the other end. The gathering was captivated by the traditional music and folk song renditions and cultural activities by hundreds of performers and artists. The state's diversity was to the four artists performing Ogudolu, Gusari, Dhimsa, Lambada, Chenchu and Bhayangla, among other dance forms, were in the spotlight. Also on show were art forms and festivities that are unique to the region, including Bonalu, Bathukamma and Ghatam. The Greater Hyderabad Municipal Corporation put up 88 stalls from various departments like handicrafts and rural development, besides popular eateries. Fireworks in the skies over the Hussain Sagar enthralled the spectators. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to you, Farhat.
धन्यवाद शेफाली. सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से. तो दिल्ली का भी वही हाल है. वोटों की गिनती सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे होगी. दिल्ली में 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में भारत नगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी, पूर्वी दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल परिसर, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में गोल मार्केट, उत्तर पश्चिम दिल्ली में शाहबाद दौलतपुर, पश्चिमी दिल्ली द्वारका सेक्टर 3 और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सिरी फोर्ट में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पिछले महीने की 25 तारीख को मतदान हुआ था, जिसमें 58.69% मतदान दर्ज किया गया था. वहीं दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग द्वारा नाबालिग चालकों और उनके अभिभावकों के खिलाफ जारी चालान की संख्या में 573% की वृद्धि हुई है. पुलिस ने चालानों में वृद्धि का श्रेय कठोर प्रवर्तन रणनीतियों और ट्रैफिक पुलिस की प्रतिबद्धता को दिया है. वहीं राजधानी में चल रहे जल हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली के लिए कम से कम एक महीने तक अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है. दोनों राज्य सरकारों को एक आधिकारिक पत्र लिखते हुए जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि मॉनसून आने तक अगर दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिलता है तो लोगों को इस समस्या से काफी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से इस समस्या से निजात पाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और उन्हें हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की आशा है. इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए जल मंत्री ने बताया कि हीट वेव के कारण जल संकट की समस्या और भी कठिन हो गई है. और अब श्रोताओं रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई सीमा शुल्क ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4 दिवसीय अभियान में लगभग 10 किलोग्राम सोना और 7 करोड़ रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और 88 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की है। पिछले महीने की 27 मई से 30 तारीख के बीच की गई जब्ती के सिलसिले में 20 मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शारजाह और मस्कट से मुंबई की यात्रा कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को उनकी प्रार्थना चटाई से बरामद रबर शीट में मोम में सोने की धूल छिपाकर ले जाते हुए पाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो बारासात और मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे ये मतदान शुरू हो गया और शाम 6 बजे तक इसमें वोट डाले जाएंगे। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 7वें चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। पुनर्मतदान का निर्णय चुनाव अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
लोक निर्णय 2024 देश का पहला और सबसे विश्वसनीय प्रसारक आपके लिए ला रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी परिणामों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम।
4 जून सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना के पल पल की खबर।
जानिए कौन है आगे कौन पीछे,
हर सीट से सटीक जानकारी, कौन हारा और किसने बाजी मारी,
देश की करोड़ों जनता का क्या है निर्णय।
आकाशवाणी गोल्ड और अन्य आकाशवाणी चैनलों पर सुनिए लोक निर्णय 2024।
और श्रोताओ चलिए अब रुख कर लेते हैं मौसम का। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाएंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
Yes, now we'll have a look at the weather in south. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature is 29 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is 20 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with 1 or 2 spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius.
और श्रोताओ चलिए आइए अब इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज 3 जून 2024 है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व साइकिल दिवस की। इसके पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके फायदे क्या हैं। साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, तो वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अगर एक वाहन के तौर पर देखें तो भारतीय परिवेक्ष्य में कई लोग स्कूल कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं।
Life is like riding a bicycle. In order to keep your balance, you must keep moving, says Albert Einstein. June 3rd is celebrated as World Bicycle Day. This day aims to promote physical activity through cycling. Bicycles are one of the oldest and most essential means of transportation. Cycling is not only enjoyable but also a healthy and environmentally friendly mode of transport. Beyond its nostalgic charm, biking offers numerous practical benefits and contributes to environmental sustainability. The World Health Organization, WHO, underscores that cycling is an effective way to achieve recommended activity levels, making it an important practice for maintaining health and well-being. In conclusion, cycling is more than just a mode of transportation or a fun recreational activity. It's a lifestyle choice that can positively impact your health and well-being in numerous ways. So grab your bike, hit the road or trails and start enjoying the health benefits of cycling today.
बिल्कुल शेफाली, और कई अखबारों ने भी आज विशेष खबरें इस पर प्रकाशित की हैं। राजस्थान पत्रिका की एक रोचक खबर है, भीलवाड़ा में अनूठे अंदाज में बराती साइकिल से विवाह स्थल पर पहुंचे। वहीं 69 साल के जनार्दन शर्मा भी गाड़ी का हैंडल लगाकर साइकिल चलाते हैं और इस कारण वो इस उम्र में भी काफी फिट हैं। तो ये रोचक खबरें रही जो आज विश्व साइकिल दिवस पर प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है इसके बाद हम जो हमारे श्रोता हैं वो जो कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो भी साइकिल चलाना शुरू कर देंगे।
इंडीड
जी बिल्कुल, और हमने इतनी सारी बातें जब विश्व साइकिल दिवस पर कर ही ली है तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बेवकूफ से, आइए सुन लेते हैं।
माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं। अरे माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं, दिल है तो दिलदार भी है,
दिलदार नहीं तो दिल भी नहीं,
दिल है तो दिलदार भी है,
दिलदार नहीं तो दिल भी नहीं।
तो आज से ही अब साइकिल की शुरुआत कर लीजिए अगर आपको फिट रहना है। तो चलिए श्रोताओ, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सन 1918 की गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई।
On this day in 1901, Mahakavi G. Sankara Kuru, Malayalam poet, was born. He was the first winner of the coveted Gyanpeeth Award in 1965 for his poems Odda Kural in Malayalam.
सन 1994 में भारत साहित्य क्लब का नया नाम भारत साहित्य मंच किया गया।
In 1916, स्मृति नथीबाई दामोदर ठाकर से विमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड।
सन 2005 में फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया।
एंड इन 1947, इवनिंग न्यूज़पेपर जय हिंद वॉज पब्लिश्ड।
सन 2008 में जापानी प्रयोगशाला के साथ अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। वैज्ञानिकों को सौर परिवार के बाहर अब तक का सबसे छोटा ग्रह मिला।
एंड इन 1972 फर्स्ट ब्रिटिश डिजाइंड इंडियन बिल्ड मॉडर्न वॉरशिप ऑफ द लियांडर क्लास INS निलगिरी कमीशन बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज कम्प्लीटली मेड इन माजगांव डॉक मुंबई।
और सन 2009 में मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर चुना गया, वे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी।
And in 1985, the week comprising of 5 working days was implemented in central government offices for its staff.
और श्रोताओ, बढ़ते हैं अब अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करते हैं कुछ मशहूर हस्तियों को जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और सबसे पहले हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो हैं हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य। भट्ट भारतेंदु युग तथा द्वेदी युग को जोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, पत्रकारिता, पुस्तक समीक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में एक साथ योगदान दिया, किंतु उनकी प्रतिभा मुख्यतः निबंधों में चमकी। इसके अलावा शेफाली, अगर बात की जाए उनके व्यंग्य की, तो पत्नी स्तव जो उनका व्यंग्य था वो काफी लोकप्रिय रहा, तो उसके कुछ जो लाइनें हैं वो मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी। जिस घर में तुम अपना सौम्य रूप धारण किए हो वहां समग्र संपत्ति हंस रही है, जहां तुम्हारा भयंकर प्रचंड और उदंड रूप घर के एक एक प्राणी को विकल किए है, वहीं दरिद्रता का वास रुद्रन और कंदरन का सहकारी हो अहकार मचाए हुए है। सेवा करने में दासी, एकांत में सलाह देने वाली मित्र, घर गृहस्थी की बातों में उपदेश देने वाली गुरु, पति भक्ता, पति प्राण पत्नी उन्हीं को मिलती है जिन्होंने इसी पूर्ण तीर्थ में अच्छी तपस्या कर रखी हो। गज रामनी जिसकी चाल के आगे हंसों की अपनी चाल का घमंड चला जाता है, जिस पीक वैली की वचन माधुरी सुन कोकिला लज्जित हो मौन व्रत धारण कर लेती है, जिसके नवनीत कोमल अंगों के साथ होने में चमेली की कोमलता पत्थर सी कड़ी मालूम होती है, शोभा और सौंदर्य की अतिष्ठा लक्ष्मी जिसके लाव राव जल्दी की लहरी हो अचंभे में आप गोता खाने लगती हैं, एक नारी सुंदरी वा दरिवा। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो है पत्नी का वर्णन दिया है इस व्यंग्य में।
बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं ये। Now we also celebrate the birth anniversary of Tarla Dalal today, who is an Indian food writer, chef, cookbook author and host of cooking shows. Dalal started conducting cooking classes from her home in 1966, which led to the publication of her first cookbook, The Pleasures of Vegetarian Cooking, in 1974. Her cooking shows included The Tarla Dalal Show and Cook It Up with Tarla Dalal. Over time, her popularity grew. Though she wrote about many cuisines and healthy cooking, she specialized in vegetarian Indian cuisine, particularly Gujarati cuisine. Tarla Dalal is credited with introducing and popularizing foreign cuisines to the masses. She used to create vegetarian versions of a lot of non-vegetarian recipes from foreign lands. So, a biopic, Tarla, starring Huma Qureshi, was released on 7 July and 2023. So, let's listen to a clip from the trailer of that movie.
देखो ना, लाइफ में कुछ करना है। हाँ, अभी क्या करना है वो अभी मालूम नहीं है, पर कुछ तो करना है।
आज मैं आपको बताऊंगी मेरे कुछ करने की रेसिपी। पहले तो आप 4-5 ऐसे लोग लो जो आप पे हंसते हो।
रोटी गोल ही क्यों होती है? पराठा तो स्क्वायर, ट्रायंगल सब बनता है।
Today is also the birth anniversary of Mala Sen. She was a Bengali Indian British writer and human rights activist. As a writer, she was known for her book India's Bandit Queen, The True Story of Phoolan Devi, which led to the acclaimed 1994 film Bandit Queen. After researching the oppression of women in rural India, she also published Death by Fire in 2001. While in India, she became particularly interested in press reports about a lower caste poverty-stricken woman called Phoolan Devi, who had suffered forced marriage at 11, gang rape and kidnapping. So based on Phoolan Devi's story, she made a movie, Bandit Queen, in 1994. And so let's listen to a song from that movie, Choti Si Umar. और श्रोताओं, चलिए अब याद कर रहे हैं हम भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा को। वे बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बहुचर्चित शारदा एक्ट के प्रकल्पक थे। हरिविलास जी समाज सेवा के क्षेत्र में आरंभ से ही अग्रणी रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिन्दू सुप्रियोरिटी है। इस ग्रंथ में इन्होंने सप्रसार सिद्ध किया है कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हिन्दू सभ्यता ने देशों से बहुत आगे रही। Today is also the birthday of Thrissur C. Rajendran, a Carnatic violinist from Kerala, India. His domain is enriching the raga bhav through musical embellishment. He is known for his non-domineering responses to the challenges posed by the artists he accompanies. He has composed classical items in addition to lyrics for light music. And interestingly, he also had an All India Radio Connect. He was on the staff of All India Radio from 1975 to June 2009. At AIR, he served as a music composer, lyricist and broadcaster in the realm of spoken word items. He debuted by accompanying Palakkad, and his maiden performance in Doordarshan was by accompanying Puthukode Krishnamurti.
और श्रोताओं, चलिए आज हम याद कर रहे हैं भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, उसके जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास पटेल को। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है। कुरियन तथा त्रिभुवन दास पटेल ने दूध के उत्पादन का प्लांट लगाया और इस तरह अमूल की स्थापना हुई। इस व्यवस्था से गुजरात में पूरे साल दूध का उत्पादन होने लगा और इसका जुड़ाव मुंबई की आर्य कॉलोनी के संयंत्र से हुआ, जहां पूरे वर्ष दूध की खपत होती रहती। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवन दास पटेल को 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Today is the birthday of Rafael Nadal, a Spanish professional tennis player. Nadal has been ranked world number one in singles by the Association of Tennis Professionals, ATP, for 209 weeks and has finished as the year-end number one 5 times. Nadal has won 22 Grand Slam men's singles titles, including a record 14 French Open titles. He has won 92 ATP level singles titles, including 36 Masters titles and an Olympic gold medal, with 63 of these on clay courts. And I would just like to end with a quote by him. He says, "The glory is in being happy. The glory is not winning here or winning there. The glory is enjoying practicing, enjoy every day, enjoying to work hard, trying to be a better player than before."
Bilkul Shefali, aur aage aapke paas kya hai?
जी, टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रांस काफ्का, अ जर्मन स्पीकिंग बोहेमियन ज्यूइश नॉवलिस्ट एंड राइटर फ्रॉम प्राग. ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर. हिज वर्क फ्यूजेस एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म एंड द फैंटास्टिक. इट टिपिकली फीचर्स आइसोलेटेड प्रोटैगनिस्ट्स फ्रॉम फेसिंग बिजार और सररियलिस्टिक प्रेडिकमेंट्स एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल सोशियो ब्यूरोक्रेटिक पावर्स. आई ऑल्सो हैव अ कोट बाय फ्रांस काफ्का फ्रॉम द मेटामॉर्फोसिस. काम, indeed, the calmest reflection might be better than the most confused decisions.
और श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर.
Stay tuned for coming up next to Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.